आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 5 को आधा पढ़ा था, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय एचजी वेल्स। स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से आपको लास्ट लेसन का रिकैप देती हूँ और इसके बाद हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ये स्टोरी तब शुरू हुई जब दो लड़कों ने बहुत ही हैरानी से पैरों के निशान को देखा, जो कीचड़ से भरे हुए थे। लंदन के बीचों बीच में एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पांव वाला इंसान क्या कर रहा था और वो इंसान था कहाँ? जब वो ध्यान से देख ही रहे थे कि एक बहुत अजीब चीज उन्हें दिखाई दी। पाँव का एक ताजा निशान पता नहीं कहाँ से वहां आ गया। एक के बाद एक और पाँव के निशान पड़ते गए, सीढ़ियों के नीचे सड़क की ओर बढ़ते गए। लड़कों ने भी उसका पीछा किया, लेकिन धीरे धीरे वो कीचड़ से भरे हुए निशान अब धुंधले होते जा रहे थे और एक पॉइंट पर वो गायब हो गए। अब ये जो सीक्रेट था, इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल साफ और सीधी थी। वो हैरान लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी इंसानी शरीर को पारदर्शी बनाने की खोज की थी। ग्रिफिन, जो कि एक वैज्ञानिक था, उसने ये सिद्ध कर दिया था कि इंसान के शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है, और ये करने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद उसने एक ऐसी दवा खा ली जिसकी वजह से उसका शरीर पारदर्शी हो गया, लेकिन वो शीशे की तरह कठोर भी रहा, यानी वो सॉलिड तो था लेकिन दिखाई नहीं देता था। ग्रिफिन एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, लेकिन वो कानून को बिल्कुल नहीं मानता था। उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था और उसके मकान मालिक ने कोशिश की थी कि वो उससे अपना मकान खाली करवा ले। इसीलिए ग्रिफिन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, और इसी नाराजगी के चलते ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। और वहां से भागने के लिए ग्रिफिन को अपने सारे कपड़े उतारने पड़े, तो ग्रिफिन वहां से भाग आया। लेकिन अब वो बेघर घुमक्कड़ बन गया, बिना कपड़ों के, बिना पैसे के और अदृश्य। बच्चों को तो उसने आसानी से बेवकूफ बना दिया और उनसे आसानी से पीछा छुड़ा दिया, लेकिन अभी उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए बहुत ही गलत समय चुना था। सर्दी का समय था, हवा भी बर्फीली थी, और बिना कपड़ों के ग्रिफिन का काम नहीं चल सकता था। सड़कों पर घूमने के बजाय उसने गर्मी के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में चुपके से घुसने का निर्णय ले लिया। स्टोर के बंद होने का समय हो गया था, और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए, ग्रिफिन ने बिना पैसे खर्चे खाना भी खा लिया और कपड़े भी पहन लिए। उसने डिब्बे तोड़कर बाकी सारी चीजों का यूज भी कर लिया, और उसके बाद वो वहां पर रजाइयों के ढेर के ऊपर सो गया। अगर ग्रिफिन समय पर जागने में सफल हो जाता तो सब कुछ ठीक ठाक होता, लेकिन वो उस समय जागा जब दुकान के असिस्टेंट्स वहां पर आ गए थे। जब उसने दो असिस्टेंट्स को आते हुए देखा तो वो डर गया और वहां से भागने लगा, और नेचुरली उन दोनों असिस्टेंट्स ने ग्रिफिन का पीछा किया। फिर दोबारा से उसे अदृश्य होकर वहां से गायब होने के लिए और बचने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़े, और फिर वो दोबारा ठंड में बिना कपड़ों के घूम रहा था। इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का निर्णय किया। उसे आशा थी कि वहां उसे न केवल पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, बल्कि कंधों के ऊपर के भाग को ढकने के लिए भी कुछ चीजें मिल सकेंगी। ठंड से कांपते हुए वो तेजी से ड्रेरी लेन गया, जो थिएटर जगत का केंद्र था। उसे जल्दी ही एक ठीक सी दुकान मिल गई। वो उसके अंदर अदृश्य रूप में घुस गया, सीढ़ियों पर चढ़ा, और थोड़ी देर बाद अपने माथों पर पट्टियां बांधकर काला चश्मा, नकली नाक, एक बड़ी सी मूंछ और एक बड़ा सा हैट सिर पर रखे बाहर आया। बिना दिखाई दिए बचकर निकलने के लिए उसने दुकानदार के सिर पर किसी चीज से प्रहार कर दिया और उसका सारा पैसा लूट लिया। अब लंदन में तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। उस सारी भीड़ से बचने के लिए ग्रिफिन ने आइपिंगाव को जाने वाली एक ट्रेन पकड़ ली, जहां उसने स्थानीय सराय में दो कमरे भी बुक करा लिए। ठंड के मौसम में किसी अजनबी का सराय में आना एक असामान्य बात थी। इस प्रकार की अजीब शक्ल वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे। मिसेस हॉल, जो सराय के मालिक की पत्नी थी, ने पूरी कोशिश की कि उनसे मित्रता कर ले या दोस्ती कर ले, पर ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और ये बात उसने मिसेस हॉल को बता दी कि आइपिंग में उसके आने का कारण है एकांतवास। वो अकेला रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके काम में बाधा डाले। इसके अलावा एक दुर्घटना में उसका चेहरा खराब हो गया था। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक संघीय वैज्ञानिक है और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसने किराया पहले ही दे दिया है, मिसेस हॉल ने उसकी अजीब आदतों को इग्नोर किया और जो उसे बात बेबात गुस्सा आता था उसको भी इग्नोर किया। लेकिन ग्रिफिन का चुराया हुआ पैसा ज्यादा दिन तक नहीं चला और अब ग्रिफिन को ये मानना पड़ा कि उसके पास नगद धन नहीं है। उसने बहाना किया कि उसे जल्दी ही एक चेक मिलने वाला है। कुछ दिनों के बाद एक बहुत अजीब सी घटना घटी। सुबह बहुत सवेरे एक पादरी और उसकी पत्नी अपने स्टडी में शोर को सुनकर नीचे गए। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उन्होंने पैसों के खनखनाने की आवाज सुनी, जिन्हें पादरी ने डेस्क में डाला था और अब वो डेस्क से निकाले जा रहे थे। बिना किसी शोर के और अपने हाथों में लोहे की एक छड़ी पकड़े हुए पादरी ने दरवाजा खोला। उसने कहा कि सरेंडर कर दो, जो भी है वो सामने आओ। फिर ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि कमरा बिल्कुल खाली था। उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और चिमनी के ऊपर की ओर देखा, वहां पर भी कोई इंसान नहीं था, किसी का भी नामो निशान नहीं था। लेकिन डेस्क को खोला गया था और उसमें से घर खर्च का सारा पैसा चुरा लिया गया था। पादरी सारा दिन इस बात से परेशान था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन ये इतना असाधारण नहीं था जितना कि कुछ समय बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था। सराय का मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे। जब उन्होंने वैज्ञानिक के कमरे का दरवाजा पूरी तरह से खुले हुए देखा तो वो हैरान हो गए। हमेशा ये बंद ही होता था और इस पर ताला लगा रहता था, और अगर कोई उसके कमरे में चला जाए तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और गुस्से से वो आग बबूला हो जाया करता था। अवसर इतना अच्छा था कि उसे खोने का मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल को बिल्कुल भी मन नहीं था। उन्होंने दरवाजे के चारों ओर छुपके से झांक कर देखा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने छानबीन करने का मन बना लिया। वो ग्रिफिन के कमरे के अंदर गए, जहां उन्होंने देखा कि बिस्तर पर कपड़े ठंडे थे, यानी वैज्ञानिक को उठे हुए कुछ समय बीत गया था। और इससे भी अजीब बात ये थी कि जो कपड़े और पटिया वो हमेशा पहना करता था वे कमरे में बिखरे पड़े थे। यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि ग्रिफिन अपने कपड़ों और पटियों के बिना है और कमरा खुला हुआ है। ये सब बहुत ही अजीबोगरीब था मिस्टर और मिसेस हॉल के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने स्टोरी को पढ़ लिया था। आगे की स्टोरी को पढ़ने के लिए चलिए वापस हम चैप्टर पर आते हैं। आप सभी पेज नंबर 29 के फिफ्थ पैराग्राफ पर आ जाइए। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged
straight at her, legs foremost, as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them.
अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास किसी की सांस लेने की आवाज सुनी। एक ही सेकंड बाद पलंग पर रखा हुआ हैट उछला और मिसेस हॉल के चेहरे से जा टकराया। फिर बेडरूम की कुर्सी जाग उठी, यानी वो ऐसे बिहेव करने लगी जैसे उस कुर्सी में जान हो। हवा में उछलकर उसने सीधा मिसेस हॉल पर सीधे टांगों से धावा बोल दिया। जब वह और उसका पति डर के मारे मुड़े तो उस असाधारण कुर्सी ने दोनों को धकेलकर बाहर निकाल दिया और तब दरवाजा बंद हो गया और ताला लग गया।
मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। शी वॉज कन्विंस्ड that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture.
Mrs. Hall लगभग बेहोश होते हुए सीढ़ियों पर गिर गई। उसे विश्वास हो गया कि कमरे में आत्माओं का वास था और अजनबी ने किसी तरह से इन आत्माओं को उसके फर्नीचर में डाल दिया है।
My poor mother used to sit in that chair. She moaned, to think it should rise up against me now.
Mrs. Hall ने बहुत ही दुखी मन से कहा, मेरी माँ बेचारी उस कुर्सी पर बैठा करती थी। कैसी अजीब बात है कि वही कुर्सी अब मेरे अगेंस्ट हो गई है।
The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money.
पड़ोसियों को ऐसा लगा कि ये मुसीबत किसी जादू टोने की वजह से हुई है, लेकिन जादू टोना था या नहीं, जब पादरी के घर की चोरी के बारे में लोगों को पता चला तो उस अजीब वैज्ञानिक पर उस घटना में हाथ होने का संदेह किया गया। संदेह और अधिक बढ़ गया जब वैज्ञानिक ने अचानक नगद पैसे पेश किए, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही ये कबूल किया था कि उसके पास तो कोई पैसा है ही नहीं।
The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom.
गांव के सिपाही को गुप्त रूप से बुलावा भेजा गया। सिपाही का इंतजार करने की बजाय मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास गई, जो रहस्यपूर्ण तरीके से अपने खाली कमरे से अचानक से पता नहीं आ गया।
I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room.
Mrs. Hall ने ग्रिफिन से कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस तरह से खाली कमरे से बाहर आ गए और ताला लगे कमरे में तुम कैसे घुस गए।
चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 30 पर आइए। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious.
वैज्ञानिक, जो हमेशा से ही तुनक मिजाज का था और बहुत जल्दी से गुस्सा करने वाला इंसान था, अब तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था।
You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you.
तभी ग्रिफिन ने कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और क्या हूँ।
बहुत अच्छे, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ।
Suddenly, he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अचानक उसने अपनी पट्टियां, मूछें, चश्मा और नाक को उतार फेंका। उसे ऐसा करने में बस एक मिनट लगा। जो लोग शराब घर के पास बैठे थे, वो बिना सिर वाले इंसान को देखकर डरने लगे।
मिस्टर जेफर्स, द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। बट जेफर्स was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested, with or without his head.
Mr. Jeffers, जो कि सिपाही थे, अब आ पहुंचे, और ये देखकर वो हैरान हो गए कि उन्हें एक बिना सिर वाले आदमी को बंदी बनाना था। पर जेफर्स को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोक पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने किसी इंसान को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हों, तो उस इंसान को गिरफ्तार करना ही था, चाहे वो सिर वाला हो या बिना सिर वाला। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 30 पर दी गई पिक्चर को देखिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल सामने मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल दिखेंगे, पीछे बार में बैठे लोग भी आपको दिखाई देंगे, और साथ ही जेफर्स जो कि पुलिस कांस्टेबल है वो आ चुका है, और इनविजिबल मैन अपनी पटिया उतार रहा है, और आप देख सकते हैं कि उसका शरीर तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसका सिर दिखाई नहीं दे रहा। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टोरी पर वापस आइए।
देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ struggling with someone he could not see.
चलिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 31 पर आइए।
At all, some people tried to help him, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere.
इसके बाद बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। जेफर्स जो कि सिपाही था, उसने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो जैसे जैसे अपने कपड़े उतारता जा रहा था, वैसे ही उतना ही अदृश्य होता जा रहा था। आखिर में एक कमीज हवा में उछली और सिपाही ने खुद को एक ऐसे इंसान के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसे वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मुक्कों की मार सहनी पड़ी। और सबसे मुश्किल की बात तो ये थी कि उन्हें ये ही नहीं पता चल रहा था कि ये मुक्के आ कहां से रहे हैं।
इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट।
आखिर में जेफर्स ने
अब अदृश्य वैज्ञानिक को काबू करने के लिए एक लास्ट कोशिश की। तो उसे ग्रिफिन ने इतनी तेज से मुक्का मारा कि जेफर्स वो मुक्का खाते ही बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। वहां घबराहट से भरी और बहुत ही एक्साइटेड चीख सुनाई दी, उसे पकड़ो। पर ये कहना तो आसान था लेकिन करना नहीं, क्योंकि ग्रिफिन तो अदृश्य था, तो पकड़े भी तो किसे पकड़े, उन्हें तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। ग्रिफिन ने खुद को झटक कर छुड़ा लिया और कोई भी ये नहीं जानता था कि उसे कैसे पकड़ा जाए। तो ये थी स्टोरी स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे एक साइंटिस्ट जिसके पास बहुत अनयूजुअल पावर्स थी, जो अदृश्य हो सकता था, उसने अपनी पावर्स का कैसे मिसयूज किया। उसने अदृश्य होकर सारे कानून तोड़े, काफी सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, काफी जगह चोरियां की, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और आखिर में वो इस अदृश्य रूप में ही अपनी जान बचाकर भाग गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के ग्लॉसरी पार्ट को पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 31 के थिंक अबाउट इट पर आइए। थिंक अबाउट इट, क्वेश्चन 1। ग्रिफिन was rather a lawless person. Comment: ग्रिफिन एक कानून विरोधी था। इस पर आप टिप्पणी कीजिए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ग्रिफिन was a brilliant scientist. He carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. In the end, he discovered some rare drugs and swallowed them. His body became transparent like a sheet of glass. He was a lawless person. He set his landlord's house on fire. Then he entered a big London store and enjoyed food. He again entered the shop of a theatrical company. He took clothes and other things without paying for them. Then he attacked the shopkeeper and robbed his money. He reached the village of Iping. There he stole the money from the clergyman's house. He also hit the landlady. Finally, he thrashed the policeman, Mr. Jeffers, who had arrived to arrest him. Thus, we see that Griffin did a number of unlawful acts throughout the story. He was really a lawless person. Griffin एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। उसने ये सिद्ध करने के लिए प्रयोग के बाद प्रयोग किए कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता था। आखिर में उसने कुछ अजीब और विशेष दवाइयों की खोज कर ली और उन्हें निगल लिया, और उसका शरीर एक शीशे की चादर की तरह पारदर्शी हो गया। वो कानून का उल्लंघन करने वाला इंसान था। उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी। फिर वो लंदन के एक बड़े स्टोर में घुस गया। वहां उसने जी भर के खाना खाया। इसके बाद वो एक नाटक कंपनी की दुकान में घुस गया। वहां उसने बिना कुछ खर्च किए कपड़े और दूसरी चीजें ली। बाद में उसने दुकानदार पर पीछे से वार कर दिया और उसका सारा पैसा लूट लिया। वो आइपिंग नामक गांव पहुंचा। वहां उसने पादरी के स्टडी से पैसे चुरा लिए। उसने सराय की मालकिन को भी मारा। आखिर में उसने सिपाही मिस्टर जेफर को बुरी तरह से पीटा। जब
वो उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां पर आए थे, तो उसके साथ बहुत ज्यादा हाथापाई की। इस तरह हम देखते हैं कि ग्रिफिन ने अनेकों बार कानून विरोधी हरकतें की थी। वो सचमुच ही एक कानून तोड़ने वाला इंसान था। क्वेश्चन टू, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप ग्रिफिन का एक वैज्ञानिक के रूप में कैसे आंकलन करोगे? देयर इज नो डाउट दैट ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। He discovered the way to become invisible. He discovered some rare drugs which could make human body visible. But Griffin was not a true scientist. A scientist aims at inventing something for the betterment and welfare of humanity. But Griffin only used his discovery for evil purposes. He misused his powers. He rather became a threat to society. Therefore, we call Griffin an eccentric scientist. इसमें संदेह नहीं कि ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। उसने मानव शरीर को अदृश्य बनाने का तरीका खोज लिया था। उसने ऐसे दुर्लभ दवाओं की खोज की जिससे मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता था। लेकिन ग्रिफिन एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था। एक वैज्ञानिक का उद्देश्य ऐसी चीजों का आविष्कार करना होता है जिसका यूज इंसान की भलाई और उसके सेवा के काम में आ सके। लेकिन ग्रिफिन ने तो अपनी खोज का प्रयोग ही केवल गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था। उसने अपनी शक्तियों का गलत यूज किया। वो तो समाज के लिए एक खतरा बन गया था। इसीलिए ग्रिफिन को एक सनकी वैज्ञानिक हम कहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, टॉक अबाउट इट पर आइए। क्वेश्चन वन, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डू यू फोरसी इफ यू डिड? क्या आप अदृश्य बनना चाहेंगे और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं जो आपको लगता है, वो अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन टू, आर देयर फोर्सेस अराउंड अस दैट आर इनविजिबल? फॉर एग्जांपल मैग्नेटिज्म। आर देयर एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर दैट आर इनविजिबल और आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज? व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक इफ यू कुड सी सच फोर्सेस और सच एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर? स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या हमारे आसपास कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जैसे कि मैग्नेटिज्म, और क्या ऐसी भी कोई चीज है जो हमें नेकेड आई से ना दिखती हो लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखती हो? और इस बारे में इमेजिन कीजिए कि अगर आपके आसपास आपको सारी चीजें दिखने लग जाएंगी तो वर्ल्ड कैसा होगा? स्टूडेंट्स, काफी सारे माइक्रो पार्टिकल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो हमें नहीं दिखाई देते, और काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और हमारे आसपास काफी सारी फोर्सेस हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, फ्रिक्शन और बाकी सारी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती बट वो प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आपको ये सब कुछ दिखने लग जाए तो आपकी दुनिया कैसी होगी, इसे अपनी नोटबुक में लिखिएगा। क्वेश्चन थ्री, व्हाट मेक्स ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट? व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? डू यू थिंक इट वुड बी साइंटिफिकली पॉसिबल फॉर अ मैन टू बिकम इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट? स्टूडेंट्स, ग्लास या वाटर ट्रांसपेरेंट कैसे बन जाता है और क्या आपको ये लगता है कि ये साइंटिफिकली पॉसिबल है कि कोई इंसान इनविजिबल या फिर ट्रांसपेरेंट बन जाए? स्टूडेंट्स, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर और ग्लास विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विच मेक्स द ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट। यानी पानी और ग्लास में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें से लाइट पास कर जाती है, और जब लाइट उनमें से पास करती है तो ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। आपको क्या ये लगता है कि इंसानी शरीर को भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है? आपका जो भी आंसर हो उसे अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है और उसके बाद एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखना है। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।